संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान गुण बिखरे हमारे ध्यान। समय सार परमाणु की सौदेनी गाथा समाप्त हो गई थी। ये हमने एक साल भर पहले समय सार का आरंभ किया है। जहां भी जाते हैं तो उसके आगे आगे का प्रचार ही लेते हैं। अभी कलकत्ता में गए थे, वहां 14वीं गाथा तक का प्रचार समाप्त हो गया था। अब उसके बाद के जो कलश हैं, उन पर अपन को चर्चा करनी है। 11वां, 12वां और 13वां आरंभ में मंगलाचरण करने के बाद दूसरी और तीसरी गाथा में ससमय क्या है और परसमय क्या है, यानी ये समय सार है ना, तो समय सार में ससमय और परसमय का स्वरूप बताया और फिर ये बताया कि सारा जगत काम भोग बंध की कथा से परिचित है। एकत्व आत्मा की बात उसने नहीं सुनी, इसलिए अब मैं एकत्र वक्त आत्मा की बात तो मैं सुनाऊंगा। तो 5वीं गाथा तक तो उन्होंने मंगलाचरण करके सामान्यतया समय का स्वरूप बताकर और प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एकत्र वक्त आत्मा समझाऊंगा। फिर 6वीं और 7वीं गाथा में संक्षेप में उन्होंने संपूर्ण समय सार आपको बता दिया। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए दो गाथाएं पर्याप्त है। एक में कहा गया है आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है और अनुभव में आया हुआ इनसे पार है उसे ही शुद्ध कहते हैं। और दूसरी गाथा में कहा कि यद्यपि व्यवहार में से कहा जाता है कि आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पर वस्तुता न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। इस प्रकार इन्होंने चार प्रकार का जो व्यवहार में होता है उसमें तीसरे और चौथे प्रकार के व्यवहार में का निषेध करके शुद्ध नय के आत्मा को बताया। असद्भूत व्यवहार नय का निषेध तो वो पंचाशिकार और संसार में करे आए। असद्भूत व्यवहार में माने पर के संयोग संबंधी के कर्म, जो संयोग का ज्ञान कराता है उसे असद्भूत व्यवहार कहते हैं। स्त्री पुत्र मकान जायदाद यहाँ तक कि शरीर भी मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये है असद्भूत व्यवहार में का निषेध, क्योंकि असद्भूत व्यवहार में से इन्हें अपना कहा जाता है। तीसरी गाथा की टीका में यहां भी संक्षेप में इनको बताकर इनका निषेध कर दिया। अब इस समय सार में ये रागादि परिणाम भी मैं नहीं हूं, प्रमत्त और अप्रमत्त के भाव भी मैं नहीं हूं, इस तरह विकारी पर्यायों का निषेध करके उत्तर सद्भूत व्यवहार में का निषेध कर दिया और गुणभेद भी मैं नहीं हूं। 7वीं गाथा में ऐसा कहकर अनुत्तर सद्गुण व्यवहार में का निषेध कर दिया, सभी प्रकार के व्यवहार में का निषेध कर दिया, तो शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा बाकी रहा। जब इन दो गाथाओं में ये बात कही तो शिष्य के चित्त में प्रश्न हुआ कि नय क्या होते हैं, व्यवहार नय क्या होता है। तो फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 5 गाथाओं में उन्होंने इन नयों का स्वरूप समझाया। परंतु में कहा कि शुद्ध नय ही का विषयभूत भगवान आत्मा ही वास्तविक है और वह भी अपना नहीं होगी। ये 12 गाथा होगी। तो जब इन नयों की बात बता दी तो फिर 13वीं गाथा में सन्ना दर्शन का स्वरूप बताया और उसमें ये कहा कि इस शुद्ध लय के द्वारा, भूतार्थ लय के द्वारा जाने हुए नौ तत्व ही सम्यक दर्शन है। जब शुद्ध लय के द्वारा जाने हुए कहा ना, तो समस्या खड़ी हो गई है शुद्ध लय क्या है। तो चौदहवीं इन गाथा में कहा कि जो आत्मा को अवध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष और असंयुक्त रूप से जाने, उसे शुद्ध लय कहते हैं। कितनी बात हो गई है, इसके बाद अपनी चर्चा करनी है। इसके बाद तीन कलश में फिर पंद्रहवीं गाथा है, और जिस पंद्रहवीं गाथा में ये कहेंगे कि ये शुद्ध लय को जिसने जान लिया, समझ लो उसने द्वादशांग वाणी जान ली। इस तरह एक प्रकरण का समापन होगा पंद्रहवीं गाथा में, ये बात अभी समाप्त हो। तो अभी बात चल रही है कि शुद्ध लय के द्वारा जाने हुआ आत्मा वो सम्यक दर्शन है, तो शुद्ध लय क्या है। तो कहा कि आत्मा कर्णों से ना तो बंधा है और ना किसी कर्म ने आज तक इस आत्मा को छू भी पाया है। इसका नाम है अवध स्पष्ट। अवध माने नहीं बंधा है और अस्पष्ट माने नहीं छुआ है। तुमको आ तो यही जब है, तो ऐसा प्रयोग होता है व्याकरण के हिसाब से, ये दोनों में लग जाएगा क्या। फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान तर्क, फिर मिथ्या लगा तो दर्शन के साथ है, लेकिन मिथ्या ज्ञान मिथ्या तर्क के साथ भी लग जाता है ना, ऐसे ही वो आ भी लग जाता है। तो कर्मों से बंधा नहीं है और छुआ तक नहीं है। लंबाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। क्या भाई साहब कैसे बात करते हो, छुआ तक नहीं है कर्मों ने इसको, क्या नहीं छुआ है। ये एक क्षेत्राव गाय हो रहे हैं ना, दूध और पानी की तरह मिल गए हैं ना। नहीं, किसने कहा दूध और पानी की तरह मिल गए, नहीं मिल सकते। क्योंकि छूने के लिए जिसे हमें छूना हो उसमें और जो छुए उसमें स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए। दोनों तरफ स्पर्श नाम का गुण होगा तभी एक दूसरे को छू सकते हैं। आप आकाश को छुओ, आप में तो ये है ना शरीर इंद्रियां, इनमें स्पर्श गुण है, लेकिन आकाश में नहीं है तो नहीं छू सकते। तो कर्म में स्पर्श गुण है पर आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए कर्म आत्मा को छू ही नहीं सकते। ये सिद्धांत की बात है, बाकी मैं तर्क नहीं दूंगा, लेकिन ये सबसे बड़ा तर्क है ना कि छूने के लिए दुतरफा स्पर्श गुण चाहिए और बंधने के लिए भी दुतरफा स्पर्श गुण चाहिए। आता ना दो गुण स्पर्श गुण अलग अधिक हो, जो बंध का कारण है ना पुद्गल में भी स्कंद बनता है उसमें स्पर्श गुण कारण है। तो आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है तो न कर्म उसे छू सकते हैं और ना वो कर्मों से बंध सकता है। डिटेल तो आपको भी समझना है तो कलकत्ता के कैसे जहां आए होंगे तो उन्हें लेकर आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने 8 दिन तक ये गाथा वहां चलाई थी पूरी अकेली, यही गाथा चल रही। मैं थोड़ा नमूना इसलिए बता रहा हूँ कि अपन को आगे बढ़ना है, यहाँ तक कहाँ तक अपन आ गए हैं। अब दूसरी बात है कि आत्मा अनन्य है, अन्य अन्य नहीं है, तो ये अनन्य क्या होगा। तो ये है, ये तो हो गया क्या परद्रव की अपेक्षा अवध स्पष्ट। अब अपने द्रव्य के भीतर चले रघुमा जी, तो जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जीव और पुद्गल की मिली हुई, जिसे मनुष्य त्रिंद देव और नायकी, इन चार पर्यायों में ये आत्मा अन्य अन्य है कि अनन्य है। तो सोचो मारीच और महावीर अन्य अन्य है कि अनन्य है, ये अनन्य क्या, यानी ये कई हैं कि अलग अलग हैं? अब तो ठीक है, मारीच और महावीर एक ही हैं कि अलग अलग हैं? कि क्या बात करते हो, कहां मारीच तो कहां महावीर, कहां जैन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी और कहां जैन धर्म का प्रचार करने वाला, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कौन कौन नरक नगोज जाने वाला क्यों? और आदिनाथ इंद्रजालिया है उसके पास मत जाओ एक कहने वाला, और कहां आदिनाथ की बात को ही जगत के सामने प्रस्तुत करने वाला, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो हम कहेंगे मारीच मारीच है, महावीर नहीं, और महावीर महावीर है, महावीर मारीच नहीं, इसका नाम है अन्य अन्य है। अब ये कहते हैं महावीर और मारीच में एक कूड़ा गोली सागर का फर्क है, ख्याल में ना, लेकिन आत्मा दोनों में एक ही है। जो आत्मा मारीच में था वही महावीर में है, तो कहते हैं वो ही है, इसका नाम है अनन्य है। वो आत्मा नहीं बदला, बदल तो गया मारीच से महावीर हो गया, मिथ्या दृष्टि से सम्य दृष्टि हो गया। अरे इसका नाम बदलना नहीं, वो आत्मा से अनात्मा नहीं हुआ, वो ही आत्मा रहा, इसका नाम है अनन्य। तो कहते हैं कि अनन्य आत्मा को जानो, अन्य अन्य को मत जानो, क्योंकि अन्य अन्य के जानने में क्या नुकसान है और अनन्य के जानने में क्या फायदा है? देखो अभी बताते हैं कि मारीच के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे हृदय में उसके प्रति द्वेष पैदा होगा। जैन धर्म का ऐसा विरोधी, मेरा बस चले तो मैं उसकी शक्ल नहीं देखूं क्यों? और महावीर के बारे में सोचोगे तो बहुत भक्ति आएगी, तो राग द्वेष में। और जब तुमसे महावीर ही मारीच है और मारीच ही महावीर है, तो किससे राग करना और किससे द्वेष करना? सहज उदासीन भाव हो गए, जीत राग भाव आ जाएगा। इसलिए अनन्य का विचार करोगे तो वितराग भाव आएगा और अन्य अन्य का विचार करोगे तो राग भाव आएगा। इसलिए ये आत्मा मनुष्य त्रिंद देव और नार की नहीं है, बल्कि सब जगह आत्मा ही है। मनुष्य भी आत्मा, देव भी आत्मा, नार की भी आत्मा, सब आत्मा है। तो अनन्य का विचार करने से वितरागता होती है और अन्य अन्य का विचार करने से राग भेष होता है। तो अनन्य और अन्य अन्य, इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं असमान जाति दृढ़ पर्याय संबंधी विषय। मनुष्य देव नारकी, इनका नाम क्या है शास्त्रीय भाषा में? असमान जाति दृढ़ पर्याय। दो दृढ़ और समान जाति के नहीं हो, एक चेतन जाति का एक अचेतन जाति का, और मिलकर जो पिंड बना उसे बोलते असमान जाति दृढ़ पर्याय। तो उसने किया था संयोग का निषेध, कर्मों का निषेध, दो कर्मों का निषेध, दृढ़ कर्मों का निषेध, और यहाँ किया असमान जाति दृढ़ पर्यायों का निषेध। तो अभी पर का निषेध हो गया, और एक प्रकार की पर्याय का, कौन सी पर्याय का? असमान जाति पर्याय का निषेध हो गया। फिर अभी बारे आगे बढ़े थोड़े, असंयुक्त बोल, मैं कर्म भंग करके ले रहा हूं, सोच समझ के चिंता नहीं करना। कर्मों से संयुक्त नहीं है माने कर्म के उदय से होने वाले राग द्वेष मोह के भाग, ये आत्मा नहीं है, इनसे आत्मा भिन्न है। तो ये विकारी पर्याय का निषेध का बोल हो गया। तो एक हो गया परद्रव का निषेध, फिर असमान जाति द्रव पर्याय का निषेध, फिर मोह राग द्वेष रूप विकारी गुण पर्याय का निषेध, ठीक है। अब फिर आता है नियत का बोल। मैं आठ दिन के प्रश्न का सार आपको आठ मिनट में बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो नियत में जानते क्या है? सदगुणी हानि वृद्धि। हरेक द्रव्य में, हरेक गुण में निरंतर सदगुणी हानि वृद्धि हुआ करती है, वो भी पर्याय है। लेकिन उससे रहित आत्मा जानो, क्योंकि उस सद्गुणी हानि वृद्धि से दृष्टि जाने से भी राग पैदा होता है, क्योंकि दृष्टि में चंचलता आती है। कैसे आई तुम्हें देखो, तो हम आपसे कहेंगे देखो तुमको प्रैक्टिस करनी है ना कि एक जगह निगाह गड़ा के देखो, ध्यान रखो इस चीज पे, और एक वस्तु जगह इसे आप देखो, तो अब इसे वो देखते रहोगे तो आपकी निगाह स्थिर हो जाएगी। अब मैं आपसे कहता हूँ इसे देखो, सर यही झूल रही है तो हमारी निगाह भी झूलेगी ना, समझना कि नहीं। सर्कस की लड़की घूम रही है, सर्कस में दौड़ रही है, अब उस पर हम निगाह गड़ाएंगे तो निगाह स्थिर होगी कि अस्थिर, तो अस्थिर वस्तु पर निगाह रखने से निगाह अस्थिर होती है और स्थिर वस्तु पर निगाह रखने से वस्तु स्थिर होती है। तो सद्गुणी हानि वृद्धि ये अस्थिर है, इसमें दृष्टि रखने से हमारी दृष्टि अस्थिर होती है और उसमें एक स्थिरता का तत्व है, उस पर दृष्टि रखने से दृष्टि स्थिर होती है, इसका भी निषेध कर दिया। तो इस सद्गुणी वृद्धि रूप जो पर्याय है अविभागी प्रतिच्छेद जिन्हें कहते हैं उसका भी निषेध कर दिया। अब और जरा मरण की बात बताना चाहता हूँ, फिर कहा अब से चुनानी गुण भेद भी नहीं है, प्रदेश भेद भी नहीं है, तो गुण भेद और प्रदेश भेद का निषेध कर दिया। अब क्या करेंगे, अब अधिस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त पांचों बोल हो गए ना। अब एक बोल में परद्रव्य का निषेध किया, तीन बोलों में पर्याय का निषेध किया, और एक बोल में गुण भेद और प्रदेश भेद का निषेध किया। पर्याय के निषेध के लिए तीन तीन बोल रखे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि बहुत अभ्यासी लोग यहां सब बैठे हैं, तो उसी दृष्टि से मैं प्रयत्न कर रहा हूं। यदि आपको बहुत कठिन लगे तो मुझे बता देना, तो मैं फिर और सरल करूंगा, लेकिन सरल करेंगे तो उसमें विषय कम आ पाएगा। तो तीन तीन चीजों से पर्याय का निषेध किया, गुणभेद प्रदेश भेद एक में निपटा दिए, फिर भी इसमें कहीं से भी ये ध्वनि नहीं आती है कि निर्मल पर्याय से भी। अभय कुमार जी बोलो सुनिए, बताओ कहां से निकालो, आसमान दादी पर्याय में निर्मल पर्याय नहीं आएगी, राजदेश में निर्मल पर्याय नहीं आएगी, और सद्गुणी हानि वृद्धि में नहीं आएगी, यदि आप संबंध में जानकार से कहते हो। क्यों आप कह सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि दृष्टि के विषय में निर्मल पर्याय भी शामिल है। हम ये भी कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस गाथा में निर्मल पर्याय का निषेध के लिए कोई बोल नहीं है, तो ये कहना चाहते हैं। अब कान की खोज करो, हम भी करेंगे, अब आपको बताएंगे। इतना तो मैंने मानो ना, नहीं तो बताओ कौन से बोल से हम निर्मल पर्यायों का निषेध करते हैं। देखो आचार्यों के सामने निर्मल पर्याय में एकत्र बुद्धि की समस्या थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें अज्ञानियों को दृष्टि का विषय समझाना था, उनके कोई निर्मल पर्याय है ही नहीं, जिन निर्मल पर्याय से प्रचित ही नहीं है, केवल जिसमें एकत्र बुद्धि करेंगे, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में एकत्र बुद्धि करेंगे, सम्मय ऋषि सम्मय दर्शन में एकत्र बुद्धि करेंगे, ये समस्या तो मिथ्या ऋषियों की है। मिथ्या तो गया नहीं, और शास्त्र पढ़ लिए उसमें आ गया केवल ज्ञान भी कोई चीज होती है, सम्मय कोई चीज होती है, अब वो मैं हूं, ऐसे लोगों की समस्या है। तो जो समस्या ही नहीं है और जबरदस्ती हम उसे माथा पत्ती करें, उसे क्या लेना देना आता है। एक बात, और दूसरी बात, इस निर्मल पर्याय को के विषय बनाने के लिए तो ये बात कही जा रही है, दृष्टि माने निर्मल पर्याय और उसका विषय, सम्यक ज्ञान माने निर्मल पर्याय परम शुद्ध निश्चय है और उसका विषय, समझे ना। तो वो तो विषय के रूप में विद्यमान है, वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आधी पार्टी उधर है और आधी पार्टी इधर है, तो उधर वाली पार्टी को इधर वाली पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्रिकेट का खेल तो आपसे प्रसिद्ध सारी दुनिया है, क्यों डॉक्टर साहब? मैं आपसे बात पूछता हूँ, क्रिकेट का जो झगड़ा है, जो जीत हार का मामला है, वो किन किन के बीच है? दो पार्टियों के बीच, और दोनों में कितने कितने मेंबर हैं? 11 तो 11 मेंबरों के बीच की लड़ाई है। जब एक पार्टी बैटिंग कर रही है और दूसरी पार्टी बॉलिंग कर रही है, तो बैटिंग वाली पार्टी के तो दो ही मेंबर मैदान में हैं, बाकी तो वहां बैठे, जो तो अंदर घुस भी नहीं सकते हैं, जो तो दर्शक दीर्घा में बैठे, क्यों? जो तो उन्हें सलाह भी नहीं दे सकते हैं। तो कहां लड़ाई है 11 की है? ये लड़ाई तो 2 और 11 की है, क्यों? ठीक है, अगर और बारी कर, 2 और 11 की कहां है? 1 और 11 की है, क्योंकि जब जिसको गेंद का सामना करना है बॉलर को, बैट्समैन को, तो दूसरा तो साइलेंट वहां खड़ा है। यानी उसे अकेले ही उस 11 आदमी को फेस करना है, 11 आदमी उसे आउट करने के चक्कर में है। गेंद वाला जो गेंद देता है ना, यदि उसकी गेंद फेल हो जाए, यानी उस पर रन ही रन बन जाए, तो भी वो आउट नहीं होता, क्यों? उसकी 6 बॉलों पर 6 छक्के लग जाए तो भी वो आउट नहीं होता, कैसा अमर है? समझे? और बल्लेबाज जरा भी चूक करे, और कितनी चीजें हैं, कैच हो जाए, फलाना हो जाए, स्टंपिंग हो जाए, मैं ज्यादा जानता नहीं, आप लोगों से बराबर, क्यों? एक आदमी को मारने के लिए 11 आदमी पीछे पड़े हैं, और उसे बचना है, क्यों? और मेरा बचना ही नहीं है, रन बनाना है। लड़ाई तो ऐसी है, दिखती है, पर ऐसे एक तरफ सारी चीजें और एक तरफ प्रवाली जो भगवान आप गुणभेद भी उधर, प्रयाभेद भी उधर, ये भी है उधर, और अब वो दृष्टि में किसको हम अपना माने, किसको विषय बनाए, इसके लिए तो उसकी खोज हो रही है। तो दृष्टि का उसमें निषेध करें, इसकी बजाय तो दृष्टि यहां खड़ी है, कहते हैं दृष्टि दृष्टि दृष्टि, तो जब वो उसे विषय बना लेगी तब पैदा होगी, सम्यक दृष्टि तब होगा वो, जब वो उस द्रव्य में अपनापन स्थापित कर लेगा उसी समय, उसके पहले तो नहीं होगी ना, वो है क्या? अभी मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें कहेंगे वो उसमें शामिल है या नहीं है, वो तो पैदा होनी है, विकारी पर्याय है, संयोग है, सद्गुणी हानि वृद्धि है, अभी उस आत्मा में विद्यमान है, असंग प्रदेशों का भेद है, अनंत गुणों का भेद विद्यमान है, और निर्मल पर्याय विद्यमान नहीं है, वो तो पैदा होगी, तो फिर तो क्या हो गया ना, अब शामिल नहीं है, कि फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो तुम्हें समझाया, यानी धर्मात्मा तो वो हो जाएगा ना, क्यों? अभी मैं कल ही गुरुदेव का एक प्रश्न पढ़ रहा था, अभी दीपरा विज्ञान में प्रश्नोत्तर दे के आया हूँ, कल ही ऑर्डर दे के आया हूँ, तो उसमें एक ही यही प्रश्न था, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न था, और उसमें गुरुदेव कह रहे थे कि क्या कहे, देखा उसका निषेध नहीं किया, निर्मल पर्याय का निषेध नहीं किया, अरे भाई निर्मल निषेध कैसे करें, तो विषय कौन बनाएगा, वो तो विषय ही है, राग को पैदा थोड़ी करना है, संयोग को पैदा थोड़ी करना है, गुणभेद को पैदा थोड़ी करना है, लेकिन निर्मल पर्याय को तो पैदा करना है, तो प्रकट करने की अपेक्षा उपाधि है, तो दृष्टि का विषय आश्रय करने की अपेक्षा उपाधि है, लेकिन राग किसी अपेक्षा उपाधि है, संबंध किसी अपेक्षा उपाधि है, ख्याल में? तो इसलिए कहते भाई कि इसलिए हम हमारा सारा ध्यान उस पर ही रहता है, हमारा प्रोजन शुरू हुआ तो सम्मा दर्शन आत्मा नहीं है, केवल ज्ञान आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर से भिन्न आत्मा बताए तो बहुत छोटा पंडित हो जाएगा, इसे पहले ही व्याख्यान में केवल ज्ञान से समझाना चाहिए। स्वामी का पंच कल्याण का सही घटना है और वहां मेरा प्रकरण हो रहा था भेद विज्ञान का, शाम को रोजाना होता था। लालचंद भाई भी बैठते थे तो मैं ये कह रहा था भेद से भिन्नता की बात में, तो आप वो एक अपन बोलते हैं ना बहुत कभी ध्यान से उड़ रहा, मैं बताऊंगा जब वो जो आत्मा कैसा है भेद किससे भेद करना है, अब परिणामी है क्या परिणाम जी प्रश्न था। तो परिणामी कहना है परिणाम के साथ कहना है तो वो तो आत्मा परिणामी तो हो गई है किसी का विषय, तो फिर अपरिणामी है। तो जब तब सुनते रहे सांस लेकर के, फिर मैंने कहा अपरिणामी भी नहीं है, क्यों ये भी परिणाम के निषेध की अपेक्षा है। अब समझ जाएंगे तो भी उस तो मेरे से आगे चीज होगी। बोली पंडित जी ये सुनना चाहता था, मैं भी यहाँ पे तो सवाल आते हैं लेकिन आप यहाँ तक भी पहुंचे। अब आप लोग किस चीज समझ में कितना आया मुझे पता नहीं, समझिए ना, क्योंकि उसका नाम जो अपरिणामी पड़ा ना वो भी परिणाम की तरफ से पड़ा, तो परिणाम उसमें नहीं है, तो इतनी अपेक्षा लग गई ना तो वो निरपेक्ष तत्व नहीं रहा। तो क्या है कि ना वो परिणामी है ना वो अपरिणामी है, वो तो जो है सो है, परिणामी अपरिणामी का विकल्प भी जिसमें खड़ा नहीं होता ऐसा भगवान आत्मा। किसान 74 की बात है, जो पंच कल्याण हो रहा था तो शाम को दर्शन होता था और उन्होंने कहा जाते थे, मैं बहुत सोचता था ये कहां तक जाते कहां तक जाते कहां तक जाते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जान बुझ कर निर्मल पर्याय को मैं छोड़ा है, पर्यायों के लिए जगह ली थी इसलिए छोड़ दिया नहीं, तीन तीन बोल दिए पर्यायों के लिए, एक विकारी पर्यायों के निषेध के लिए, एक सद्गुणी हानि वृद्धि की पर्यायों के निषेध के लिए और एक असमान जाति पर्यायों के निषेध के लिए। और प्रवचन सार की 93 और 94 गाथा में तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है सब पर्यायों के भेद बिना है, और बिना के कहा सकल अविद्या की मूल एकमात्र असमान जाति दृढ़ पर्याय है, ऐसा लिखा है। तो ये जो अनन्य वाले बोल में ये बात आती है, तो इस तरह ऐसा भगवान आत्मा की चर्चा प्रौद में आत्मा दशा में की और कहा कि आत्मा को ऐसा जो जानता है ऐसा कि अवध स्पष्ट है अनन्य है नियत है अवशेष है और असंयुक्त है, उसे तुम शुद्ध नय जानो। ये शुद्ध नय की परिभाषा, क्योंकि 13वीं गाथा में क्या कहा था राकेश कि शुद्ध नय से जाने हुए नौ तत्व सम्यक दर्शन है, ये कहा था ना। तो शुद्ध नय किसे कहते हैं, तो 14वीं गाथा में कहा कि जो आत्मा को इन पांच भाव वाला जाने उसका नाम शुद्ध नय है। ठीक है, अब ये इसके बाद में कलश है जो अपन को पढ़ना है, 11वां कलश, न नहीं विदती बद्धि स्पष्ट भावादयोगी तरन को प्रतिष्ठान अनुभवती तमेव दौत्यमान समन्ता जगदत मत भोई भूय सम्यक स्वभाव के ना ही विदती बद्ध स्पष्ट भावादयोगी। अमी माने इस आत्मा में बद्ध स्पष्ट आदि भाव नहीं है। देखो अब उल्टी बात करूं, उसने कहा अवध स्पष्ट, यहाँ कहा बद्ध स्पष्ट, वहां कहा अनन्य यहाँ कहा अन्य अन्य, वहां कहा नियत यहाँ कहा अनियत, वहां कहा सविशेष अभिशेष यहाँ कहा सविशेष, वहां कहा संयुक्त यहाँ कहा संयुक्त। तो बद्ध स्पष्ट आदि भाव उस भगवान आत्मा में नहीं है, प्रतिष्ठा न एति ऊपरी ऊपरी तरंतो, ये ऊपर ऊपर तैरते हैं और भगवान आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते। ये बद्ध स्पष्ट आदि जो भाव हैं वो भगवान आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते बल्कि ऊपर ऊपर तैरते हैं। ये ऊपर ऊपर कैसे तैरते होंगे, क्यों जैसे अपना भगवान आत्मा संघ प्रदेश ही है ना, संयुक्त दिख रहा है यानी आत्मा जी प्रदेश है, ऐसा जैसे जैसे ऊपर ऊपर ही चमड़ी है ना, ऐसे तैरते हैं जैसे कुर्ता है जैसे तैरते हैं, समझ में क्या कह रहा हूं मैं, तो ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, तो अपना शरीर जो है उतने में आत्मा के प्रदेश है ना, तो इसके ऊपर ऊपर चमड़ी, तो चमड़ी जैसा तैरता है ऊपर ऊपर के कुर्ते जैसा तैरता है, तो चमड़ी में भी आत्मा के प्रदेश तो है क्यों, तो बद्ध सारी भाव के कुर्ते जैसे तैर रखे हैं कि नहीं। अरे ऊपर ऊपर का अर्थ ऊपर जैसा तुम समझते जैसा ऊपर नहीं है, वैसे तो असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश में ये पर्याय व्याप्त है, बद्ध स्पष्ट व्याप्त है, गुण व्याप्त है, प्रदेश व्याप्त है, सद्गुण हानि वृद्धि होती है, तो सब में है, प्रदेश प्रदेश में है, हर गुण में है, तो बाहर बाहर लौटते हैं का अर्थ क्या है, बस उसके स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं है, माने स्वभाव में साधन नहीं है, किसी बात है उसमें लिखा है समय सार का एक वाक्य नहीं कौन सी आती है, एक तो कैसी नहीं जिसकी टीका में लिखा ना, स्वस्थ भजन ही स्वभाव मात्रम किल वस्तु क्यों है, संबर अधिकारी जी पहली बात है ना, 181 में स्वभाव मात्रम किल वस्तु, वस्तु सिर्फ स्वभाव मात्र है, माने विभाव उसमें है लेकिन वो उस वस्तु में शामिल नहीं, इसका नाम है बाहर बाहर करते हैं, जैसे अपने देख रहे हैं ना नेहा बैठा हूँ ऐसा, तो इसमें शरीर भी है आत्मा की प्रदेश, शरीर एक एक प्रदेश में, शरीर में एक एक अणु में आत्मा की प्रदेश है और आत्मा का एक एक प्रदेश जहाँ है वहाँ शरीर के परमाणु है ना, इसमें इस तरह से व्याप्त है कि नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि वो जो आत्मा है ना वो आत्मा के स्वभाव नहीं है, और वस्तु बोलते हैं स्वभाव मात्रम, जो स्वभाव मात्र है उसे वस्तु बोलते हैं, अब के स्वभाव स्वभाव क्या है, स्वस्थ भवन भी स्वभाव अपने का होने का नाम स्वभाव है, तो आत्मा पर खत्म करो तो ज्ञानस्य भवनम ही आत्मा, ज्ञान के होने का नाम आत्मा है, खत्म, तो ज्ञानानंद स्वभाव ही हूं मैं, खत्म और कुछ नहीं, अनंत गुण आया है इसमें अधिक पने से, असंख्य प्रदेश भी आएंगे, मतलब इनको किसी को निकाला नहीं है, घबराना नहीं, इनके भेद को निकाला है। अरे देखो ये भगवान आत्मा अनंत गुण वाला है ना, अनंत गुण अलग अलग छोड़ दो, लेकिन वो अनंत गुण वाला गुण भेद निकाल जाएंगे तो अनंत गुण वाला रहेगा कि नहीं रहेगा ना, ये उनका असंख्य प्रदेश ही ऐसे कहेंगे और प्रदेश भेद निकाल देंगे तो असंख्यात प्रदेश उसमें रहेंगे कि नहीं, अब अनादि अनंत कहा बोलो, सब पर्यायों को निकाल दिया क्योंकि एक ही पर्याय अनादि अनंत नहीं होती है, लेकिन ये आत्मा अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा कि नहीं, तो प्रदेश भेद निकाला, गुण भेद निकाला, पर्याय भेद निकाला, पर्याय पर्टिकुलर पर्याय निकाली, जो पर्यायों का अनुस्मृति से रचित अखंड प्रवाह है वो भी निकाला, प्रथम साल में बहुत विस्तार से और अभय कुमार जी पढ़ाना ना कि नंबर पर्याय उसमें भी आ रही होगी बात, नहीं तो आएगी आज नहीं आई होगी आज कल आ जाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जो भगवान आत्मा है कि जिसमें बद्ध स्पष्ट भाव आदि पांचों भाव कौन, बद्ध स्पष्ट अन्यन्य सविशेष और असंयुक्त संयुक्त, ये जो भाव हैं ये उसमें प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते माने उसके स्वभाव में शामिल नहीं है, राजा होता ना चक्रवर्ती बोला राजा होता है तो उसकी पट्टरानी ही प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है, अगर 4000 रानी भीड़ जैसी रहती है उनको कमरा दे दिया जाता है, एक फ्लैट दे दिया जाता होगा, एक दिखा नौकरानी दे दी जाती है और भीड़ जैसी रहें, समझ रहे प्रतिष्ठा को प्राप्त कौन होती है, तो चक्रवर्ती के बगैर में राज सिंहासन से कौन बैठता है, असमझ प्रतिष्ठा को प्राप्त होना माने क्या, उसकी कहलाना, अभी हम वहां थे ना कलकत्ते में भाई जी भी थे तो वो हमें संजीव गोझा वो बता रहा था वो भाई वीर के नक्शे के बारे में, तो उसने बताया और कि एक सौधर्मेंद्र होता है तो उसके जीवन काल में 40 मील इंद्राणियां आती हैं, मर जाती हैं, चली जाती हैं, आती हैं 40 मील। मील समझते हो, सैकड़ा हजार लाख करोड़ है ना, 10 करोड़ आप समझिए ना, मील मील 10 मील 40 मील। सिद्ध करके बताया कैसे, तो इनकी आयु पल्लियों में होती है, उसकी आयु सागरों में होती है, और एक सागर में कितने पल होते हैं वो हिसाब किताब निकाल के बताया। अरे भगवान जी आपने तो सुना ही होगा सर, 40 मील 40 मील कितना सुखी होगा 40 मील पत्नियां जिसकी। दुख की बात यह है कि उसी दिन अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि आदमी औरत की अपेक्षा बहुत कमजोर है, अखबार में आएगा कि कैसा कमजोर है कि ये विकास देख लो कि पत्नी मर जाती है तो 90% पति एक साल के भीतर मर जाते हैं, क्या और पति मर जाता है तो 90% पत्नियां 25 वर्ष तक जीती हैं। अब तुम निगाह डाल के देखना दुनिया में, क्यों, क्योंकि वो इतना पराधीन होता है खाने में पीने में उठने में बैठने में, क्या समझ में है ना। मैं तो आज पिछली पिंडी से कहा था बैठे हैं क्या नहीं बैठे हैं, क्या पिछली पिंडी हाथ उठाओ चले, हमने ऐसा चाहे हैं कि भाई तुमने बिना पत्नी के इतने दिन कहा था, मेरे अखबार में पढ़ के आया हूं। तो अब समझे क्यों ऐसा क्यों होता, उसके वियोग को वो बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी पत्नी के संबंध में इतना अधिक राग करते हैं, अच्छी भाषा में बोलना हो तो प्रेम करते हैं, कहो कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, यही अर्थ है ना। तो एक पत्नी के वियोग को बर्दाश्त करना कितना कठिन काम है, तो जिसे 40 मील पत्नियों का वियोग बर्दाश्त करना पड़ता हो उसकी हालत क्या होती होगी। मैंने वहां कहा अंदाजा लगा समझने क्या कहना चाहता हूं, मेरा दिमाग उल्टा चलता है उल्टा करें है ना, बोलो आज बुमरी फिर गई गोको की दूसरी ले फिर बुमरी दूसरी देखो बड़ी दूसरी, ये तो पहले सड़क की बात है भाई जी, उस 16 सड़क वाले की क्या हालत होती होगी, वो 22 सागर की आई और देवांगना कर रही है तो 3 पल्ले वाले यहीं से ले जाना पड़ता है ना, मैं योगी को वो तो असंख्य तक पहुंच जाती होंगी तो उसकी क्या दुर्दशा होती होगी। रोजीना मरा रोजीना नहीं शादी, रोजीना शाम को मर गई सुबह शादी, शाम को मर गई सुबह शादी, अपनी नियोग ने दूसरी उठा के ले आए वो शादी तो है और क्या है, क्यों बहुत दुखी है देव देवी के दुख का शरीर समझ में आया कि नहीं आया। तो कोई बोले कि यदि ऐसा है इसका मतलब वो इंद्र बहुत दुखी है, इंद्राणी तो मजे में है ना, क्योंकि महिलाओं को तो ये माना जाता है कि वो सदवा में मर जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है ना, ऐसे मानते ना कहते ना पत्नी की गोद में सर रखे रखे मर जाए ऐसी मौत किसको मिलती है, ऐसे लोग में कहा जाता है सौभाग्यवती ही मरी, समझिए ना बहुत सुखी होंगी वो। तो मैं कहता हूं कि आप एक बात और विचार करना जरा गंभीरता से, सोलह में स्वर्ग में कैसा स्पर्श लेने का विषय होता है, बोलो पहले कुछ लेने में तो आता ना मनुष्य जैसा ही होता है समझ गया, और वहां कैसा स्पर्श रस शब्द रूप और विचार मन कितने मात्र से उनकी संतुष्टि हो जाती है, बोलो किसी को शरीर के स्पर्श किया इतने मात्र से, किसी को उसने रूप देखा इतने से, किसी ने उस पत्नी का शब्द सुन लिया उतने में तृप्ति हो जाती है, और किसी ने मन में विचार कर लिया उतने में ही तृप्ति हो जाती है। अब सोल में स्वर्ग वाले में तो मन में विचार किया और तृप्ति हो गई और पर यात्री भी कर, अब पहले स्वर्ग में पैदा हुई देवांगना को तो कैसी आकांक्षाएं हैं जैसे पहले स्वर्ग में होती है, शायद बेचारा आ ऐसा ना क्यों, ठीक है, और उनको ऐसी हालत है तो उन्हें कितना इस प्रेसिडेंट जी का सिर्फ मिलता होगा, उस वेल में सुरंग में ला करेंगे। हाँ तुमको सुना था ना, वहां नहीं सुना था कलकत्ते में, तो द्वारा सुनने का मौका मिल रहा है। अब सुने वो कितनी सुखी होगी, इच्छा तो ऐसी है जैसे मनुष्य पेंटों में होती है, और उसके पति देवता के मन में निकल पाया और वहीं खत्म होगी तृप्ति, बस खत्म। बोलो क्या करें, सूर्य में सूरज के देवों की देवांगना बनना कितना पुण्य की उदय का काम है, जो श्रीराम जी देवांगनाएं कितनी सुखी हैं और देव कितनी सुखी हैं, तो देख लो दोनों की हालत क्या है। बोलो किसको जाना है सर, और किसको जाना है, ये बहना भी एक मेरे पास आए थी, बोल रही थी मेरे तो बहुत ही बुरा है, और निगोद का तो कहना ही क्या है, और पशु भी होना नहीं है, अब क्या करें, कैसे करें, कहें स्वर्ग नहीं कर जाए, स्वर्ग की क्या दशा है, देखो क्या हालत है स्वर्ग की, स्वर्ग जाना है, देख अरे चारों गतियों में दुख ही दुख है, इस संसार में रहने की सोचते ही क्यों हो, हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, संसार हमने आ गया है और ये जाए जहां जाना हो, और हम तो अपने में हैं, तो मोक्ष में जाए, मोक्ष में भी नहीं जाना है, मोक्ष को आना हो तो हम में आए, पर्याय द्रव्य में आती है, पर्याय में आता है, लड़के की बारात जाती है कि लड़की की, क्यों बोलो तो तुम्हें बारात बुलानी है कि बारात ले जानी है, अब आजकल की ऐसी बुद्धि में पत्थर पड़ गया, सब बारात बुलाते हैं, लड़का वाला कर यहीं आगे शादी करनी पड़ेगी, लड़की वाले को क्यों इधर लड़की वाला लेके आता है गांव में शादी करता है ना, क्यों तो दुर्गा जी के नाम कैसे लड़के हो गए, लड़की होना था क्योंकि इन्हें तो बारात बुलानी थी, हम क्यों उन्होंने लिखा ना स्वगानी जी ने कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, मुझे क्या देना देना, मैं किसका ध्यान करे, मैं तो ध्येय तत्व हूं, क्यों इतने से हो जाएगा, काम कह रही इतने से नहीं हो जाएगा, इतने से ही होगा, क्या नाम किशोर राम किशोर से किशोर जी क्या है, किशोर तो याद रहा सुनता हूं राज किशोर जी, हाँ बोलो, तो ये बद्धिष्पष्टादी जो भाव हैं ये वस्तु के ऊपर ऊपर तैरते हैं, ये वस्तु में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते हैं, है ना, ना? अब क्या कहते हैं कि जगत अप्रगत मोही भूल, हे जगत के जीवो सबके लिए करें, ये जगत माने जगत के सब जीवो, अप्रगत मोही भूल मूल से रहित होकर, मूल माने दर्शन मूल मिथ्या, ये किसके लिए है कलश अच्छा साहब, सम्मतियों के लिए मिथ्या दृष्टियों के लिए, ज्ञानियों के लिए अज्ञानियों के लिए, ये सारे जगत के लिए, अरे जो मोही अज्ञानी जगत है सब बादशाही गुरुस्थान वालों को, पहले गुरुस्थान वालों के लिए है, साहू जी गुरुदेव सिंह के पास गए तो गुरुदेव सिंह ने अपने शेष को समझता है कौन सा गुरुस्थान है तेरा, महाराज मैं क्या जानू, मैं क्या जानू, कि पहला गुरुस्थान है पहला, कि महाराज मेरा पहला कैसे हो सकता है, पहला तो आप जैसे बाप और पोता होगा, मेरा तो अंतिम हो जाए, कोई बहुत है पहले क्या कर रहे ऐसे लोगों के लिए है कि हे जगत अपगत मोही भूल मोह से रहित होकर सम्यक स्वभावम, आत्मा का जो सच्चा स्वभाव है तमेव प्रकाश अनुभवतु ज्योतिमानम, उस प्रकाशित होने वाले स्वभाव का अनुभव कर, इसमें एक बात और खतरनाक लिखी है, इसमें लिखा है कि दीर्घन वेतमानम अनुभवतु समन्ताप दोतमानम अनुभवतु मिला चारों ओर से प्रकाशमान के। तो इसका अर्थ मालूम क्या है कि पर्याय पर्याय में प्रकाशमान पढ़ो बच्चे पीछे दस पढ़ अपने पीछे उसी तरह जब बद्ध स्पष्टता की पांच भाव जिस आत्मस्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते मात्र ऊपर ऊपर ही तैरते हैं और जो आत्मस्वभाव चारों ओर से प्रकाशमान है अर्थात सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है चारों ओर से प्रकाशमान माने समन्तात माने चारों ओर से प्रकाशमान माने सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान अब सर्व अवस्थाओं से रहे थे सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है इस चैतन्यता हर पर्याय में प्रकाशमान है कि नहीं है हम निबोधिय भी पर्याय में चैतन्यता प्रकाशमान है कि नहीं है वो पर्याय नाम का ज्ञान निरावरण होता है कि नहीं होता है इन्हें देखेगा हर पर्याय में प्रकाशमान है तो दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है हम तो सदस्य मर गए तुम्हें क्या कह रहे हो अरे भाई वो सच्ची बात है वो गलत नहीं है तुम दृष्टि में पर्याय पर्याय को मत रखो माने अपनी दृष्टि माने अपनापन स्थापित करना तो पर्याय में तुम अपनापन स्थापित नहीं करो इसका नाम दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है करेंगे तो क्या होगा कि इतना दुख होगा कि जितना निबोधिया को नहीं होगा निबोधिया से ज्यादा दुख होगा प्रमाण से सिद्ध करता हूं तुम चढ़वाना करते हो एक श्वास में 18 बार जन्मते हो मरते हैं तो एक श्वास में जो 18वां भाग है उसमें तो असंख्य समय होते होंगे ना क्या क्या मतलब समझे कि नहीं समझे अभी करुणानियोग वालों के झगड़े में ज्यादा नहीं पढ़ना भी हो तो उनसे पूछ लेना और भी बता उनकी मान लेना मेरी मत मानना लेकिन इतना तो आप जानते हो ना कि एक श्वास में क्यों तो अंतर्मुख में कितने पद बनते हैं 3000 के कुछ बनते हैं ना इतने भव होते हैं तो इसमें एक समय का ये भव तो नहीं हुआ और निबोध में सबसे ज्यादा दुख किस बात का अगर अगला मरण और जन्म का बाकी तो कोई दुख सर्दी का दुख नहीं गर्मी का दुख नहीं तो आराम से फ्रिज में रखे रहते हैं आदमी आपको थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी सताई उन्हें क्या तकलीफ है निगोलियों के दुख का वर्णन किया तो यही तो कहा ना एक श्वास में 10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार क्यों भूख के प्यास के कुछ नहीं बना इसका मतलब जन्म मरण का दुख सबसे ज्यादा दुख है तो वो तो इतनी बार होगा एक श्वास में 18 बार और तुम्हें तो तुमने पर्याय में एकत्र बुद्धि की ना तो पर्याय कितनी समय नष्ट होगी तो कितनी समय मरण दुख होगा तो निमोनिया वाला दुख कितनी समय होगा समझ लो निमोनिया से ज्यादा दुख इस तरह समझ में आया कि नहीं आया श्री राम जी पर्याय में एकत्र बुद्धि का फल क्या है इसलिए कहते पर्याय में एकत्र बुद्धि मत करो इसका नाम है दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है उसमें अपनापन मत करो उसके कर्ता भोगता मत बनो वो तो अनाज काल से एक एक समय की नक्की है वो अपनी और पढ़ाई सबकी तो उसी के हिसाब से होगी और होते रहेगी तेरे कुछ करने से वो रुकने वाली नहीं है और तेरे कुछ करने से होने वाली नहीं है तू सारा बोझा अपने माथा से उतार दे इसका नाम है दृष्टि विषय विषय पर्याय नहीं है इसलिए कहते हे जगत तुम उस जो हर पर्याय पर्याय में प्रकाशमान है ऐसा उस द्वैतमान आत्मा में अनुभवतु माने उसमें अपनापन अनुभव करो कि ये मैं हूं ऐसा अनुभव करो इस कलश का अर्थ है बाकी अगले कलश का